जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
असहनीय दरिद्रता से ग्रस्त एक शिव भक्त ने भगवान से प्रार्थना की इस गरीबी को हटाने का कोई मार्ग बताए रात में उसने स्वप्न देखा कि भगवान शिव स्वयं स्वप्न में आए और कहा गांव के बाहर एक सन्यासी आया है उसके पास एक बहुमूल्य हीरा है तुम जाओ और उससे मांगो तो वो तुम्हें दे देगा। सपना टूटता है, वो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, कब सुबह होगी और कब मैं जाऊंगा और कब वो हीरा मुझे मिलेगा और कब मेरे जीवन की जो दरिद्रता है वो दूर होगी। सुबह उठता है, तेजी से भागा भागा गांव के बाहर पहुंचता है। वास्तव में वहां एक सन्यासी है और अभी ध्यान में बैठने ही वाला है। तो ये गरीब व्यक्ति उससे कहता है, मैं अत्यंत गरीब हूं और मैंने सुना है आपके पास एक अत्यंत बहुमूल्य हीरा है। वह सन्यासी कहते हैं, अच्छा वो हीरे का टुकड़ा, ये लो। अपनी झोली में हाथ डालता है और वो हीरे का टुकड़ा उस व्यक्ति को देता है। वो व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है, इतना बड़ा हीरा, इतना बहुमूल्य, इतना चमत्कारी, चमकीला, आज तक उसने इतना बड़ा हीरा कभी देखा नहीं था और सोचता है संसार का शायद ये सबसे बड़ा हीरा होगा। वो हीरा लेकर भागता है, धन्यवाद करना भी भूल जाता है। उत्साह, खुशी, उत्तेजना, भागा भागा घर पहुंचता है। सोचता है अब गरीबी के दिन पूरे हुए। दिन भर खुशी में बिताता है, क्या करूं क्या नहीं। दोपहर में सोता है, फिर उठता है, शाम को वापस भाग भाग के उसी सन्यासी के पास पहुंचता है और उस सन्यासी से कहता है, इतना बहुमूल्य हीरा आपने बिना झिझक के मुझे दे दिया, इसका मतलब आपके पास इससे भी बड़ा कोई खजाना होगा, अब मुझे वो दो। वो जो खजाना हृदय में छिपा है, अब मुझे वो चाहिए। वो कौन सा खजाना है जो हृदय में छिपा है और जो सबसे बड़ा है और जो सबसे बहुमूल्य, और वो पाने के बाद फिर और कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं, और वो खजाना भीतर ही है। परंतु हम भूल गए हैं कि ऐसा कोई खजाना भीतर भी है, इसीलिए बाहर खोज कर रहे हैं, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी साधन में, किसी पद में, किसी प्रतिष्ठा में, किसी धन में। अंदर भूख है, तृप्ति नहीं, इसलिए खोज बाहर चालू है। ऐसा क्या किया जाए जो आत्मा तृप्त हो जाए। मुख्य भूख तीन है, एक नींद की भूख, दूसरी काम विकार की भूख और तीसरा भोजन की भूख। इसलिए साधना केवल तीन ही है, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अमृत वेला, ब्रह्मचर्य, और तीसरा भोजन। भूख बनी ही रहती है, साधना का आज का 38वां दिन आज के बाबा के महावाक्य सभी अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो। सेवाधारी आत्माएं रोज दिल खुश मिठाई खाएंगे तो दूसरों को भी खिलाएंगे, फिर आपके पास दिल शिकस्त की बातें नहीं आएंगी, जिज्ञासु यह वह बातें नहीं लेकर आएंगे। नहीं तो इसमें भी समय देना पड़ता है ना, फिर यह टाइम बच जाएगा और इसी टाइम में अनेकों को दिल खुश मिठाई खिलाते रहेंगे। बस इतना ही है आज का। तो क्या सुना? दो बातें सुनी, एक दिल खुश मिठाई और दूसरा दिल शिकस्त की बातें। याद ही दिल खुश मिठाई है। परमात्मा याद शास्त्रों में एक शब्द है, सुरति। सुरति कहो, याद कहो, सिमरन कहो, रिमेम्बरेंस, सिमरन। जिस हृदय में परमात्मा याद है उसके पास दिल खुश मिठाई है, और जिसके पास परमात्मा स्मृति नहीं वहाँ कड़वाहट है, दिल शिकस्त की बातें है, उदासी की बात है। दिल शिकस्त की बातें, कौन सी बातें हैं ये दिल शिकस्त की? दिल शिकस्त अर्थात दुखी, उदास। उदासी तो आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी में एक ग्रुप है बीमारियों का, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, अर्थात विचारों के भ्रम। विचारों के भ्रम, एक किताब है साइकोलॉजी की, डेविड बर्न्स की, द मूड थेरेपी, न्यू थेरेपी या अन्यत्र भी जो भी मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की बातें हैं, किताबें हैं, ज्ञान है, उसमें 10 प्रकार के कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का वर्णन है। और ये सारी वही बातें हैं जो दुखी करती है, उदास करती है। तो आज हम वो 10 बातें देखेंगे। सबसे पहली, शुड्स एंड शुड नॉट, चाहिए और नहीं चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना नहीं चाहिए। नियमों को बनाया है और थोपा है अपने ऊपर, मुझे खुश रहना है, नियम बहुत अच्छा है, परंतु जीवन बहती नदी की तरह है, आज तूफान है, कल शांति होगी। समता, ये समता में रहना ही वास्तव में खुशी है, स्थिर रहना। नियम तो बना रखे है, कभी हम रोएंगे नहीं, पर इस नियम ने ही दुखी बना रखा है, क्योंकि यह नियम ऊपर से थोपा गया है। हम कभी उदास नहीं होंगे, यह नियम थोपा गया है, और जीवन थोपे हुए नियमों के आधार पर नहीं चल सकता। जीवन निरंतर बहती नदी है, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ प्रवाह है। तो सबसे पहला कॉग्निटिव डिसऑर्डर, विचारों का भ्रम, सोच का भ्रम, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसको कहते शुड्स एंड शुड नॉट। इससे भी स्वयं को मुक्त कर देना है। नियम नियमों पर चिंतन करना है, मनन करना है, क्यों जबरदस्ती नहीं, किसी ने कहा है करके, ये पहला। दूसरा, ओवर जनरलाइजेशन, ओवर जनरलाइजेशन अर्थात किसी एक ने धोखा दिया तो सब धोखेबाज है। जीवन मिश्रित अनुभव है, और घटना जीवन नहीं, घटनाएं आती है घटनाएं जाती है। ओवर जनरलाइजेशन, सबके लिए किसी एक ने ऐसा किया तो ये सारे ऐसे ही है, ये सोच, ये डिफेक्टिव सोच दुखी करती है। साइकोलॉजिस्ट ने आदिवासियों का अध्ययन किया और देखा कि वो बड़े खुश रहते हैं, क्यों, सुबह उठते हैं ताज़ा ताज़ा, पक्षियों की तरह, पौधों की तरह, दिन भर कारोबार करते कार्य करते, शाम को डांस करते और रात को सो जाते, देखा गया उनको स्वप्न भी नहीं आते, स्वप्न तो अधूरी कामनाएं हैं, भोले भाले लोग हैं। और मॉडर्न मैन जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, वो दुखी है, और ये जो गांव में आदिवासी जहां पर टेक्नोलॉजी अभी पहुंची नहीं, एकदम किसी जंगल में घने भीतर रहते हैं, छोटा सा एक कबीला है, उनको पूछा गया क्या देखा स्वप्न में, वो कहते हैं कोई स्वप्न ही नहीं आता है। मनुष्य बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, इसलिए कई सारी अव्यक्त मुरलियां है जो एक ही टॉपिक पर चली है, सरलता। कौन से टॉपिक पर चली है? सरलता। और हम कैसे हैं? जटिल, कठिन, वो कमेलियन, कमेलियन पता है ना क्या, गिरगिट, रंग बदलते रहते हैं गिरगिट की तरह। फिर आपके पास दिल शिकस्त की बातें नहीं आएगी, रोज दिलकुश मिठाई खाएंगे तो अमृत वेला ये मिठाई खाओ, अमृत वेला इस मिठाई को खाना है, रिव्यू करना है दिनचर्या को, देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहला बताया पहला कौन सा ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ओवर जनरलाइजेशन। तीसरा, मेंटल फिल्टरिंग। जो भी घटनाएं होती है उसको हम फिल्टर करते हैं, सारा पॉजिटिव निकालते हैं और जो निगेटिव है उसको पकड़ते हैं। ये किया वो किया, ये किया वो किया, अरे कुछ सीखा भी तो तुमने, उसको तो छोड़ ही दिया। और जो कुछ निगेटिव है उसको पकड़ते हैं, वो भी एक डिफेक्टिव थिंकिंग, उसको कहते हैं मेंटल फिल्टरिंग। इतनी अच्छी अच्छी बातें भी हुई उसका कोई ख्याल नहीं। अगला, इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग, सबने आके हेलो किया, ओम शांति किया, एक ने नहीं किया। हम सोचते हैं जरूर ये मुझसे नाराज है, जबकि उसका ख्याल ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं। इमोशनल रीजनिंग। अगला है जंपिंग टू कंक्लूजन्स, तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचना। कोई चीजें देखी ऐसी ऐसी हो रही है, तुरंत अनुमान लगाना, इसको बाबा क्या कहते हैं, अनुमान की बीमारी। ये भी दुखी करता है, गेस वर्क। अगला, मिनिमलाइजेशन एंड मैग्निफिकेशन। खुद को बहुत छोटा समझना और दूसरे को बहुत महान समझना। मेरे में कुछ भी नहीं है, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, और किसी और को देखो जिसमें कोई अद्भुत सी प्रतिभा है, ऐसा लगता है इसको कितना आता है। स्वयं में हीन भावना, मिनिमलाइजेशन, स्वयं को बहुत छोटा कर देना और दूसरे को आकाश पर बिठा देना। मैग्निफिकेशन, ये भी क्या करता है, दुखी करता है। हम ये क्यों भूल रहे हैं, इस ड्रामा का हर अभिनेता अपने आप में एक कलाकृति है, यूनिक है, इररिप्लेसेबल है। हर आत्मा अलग है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। अगला, कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, अर्थात राई का पहाड़ बना देना। है छोटी सी घटना, पर आंधी, छोटी सी आंधी को तूफान समझ लेना। छोटी सी बात है परंतु उसको बहुत बड़ा समझना और उसका वर्णन करते रहना, और जितना अधिक वर्णन उतना अधिक वो बढ़ती है। ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफी अर्थात महाविनाश। अगला, लेबलिंग, लेबल करते हैं। ये ऐसा ही है, इसने एक बार झूठ बोला था, ये झूठ ही बोल रहा है, ये हमेशा लेट आता है। एक बार कोई लेट आया, उसके ऊपर एक लेबल चिपका दिया है कि ये ऐसा ही है, परमानेंट लेबल। जबकि वो बदल चुका है, जो 10 साल पहले अनुभव था हम उसी को पकड़ के हैं अभी तक, ये ऐसा है। जबकि वो कहाँ से कहाँ निकल चुका है, हर एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत यात्रा में आगे बढ़ रहा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा है, जाने अनजाने में हर अनुभव उसे परिपक्व बना रहा है। अगला, ऑल और नन, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। ये अच्छा है, ये बुरा है, जीवन ऐसा नहीं होता है, जीवन में मिश्रित अनुभव होते हैं, बीच के। हर व्यक्ति में अच्छाई भी है, बुराई भी है, पर हमने एक को अच्छा माना, एक को बुरा माना। ये घटना बहुत बुरी थी, एकदम बुरी, ये घटना बहुत अच्छी थी, यह बहुत अच्छा है, यह बहुत बुरा है, यह बहुत पॉजिटिव है, यह बहुत नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज मिक्स्ड। जीवन उस कैनवास की तरह है, उसमें अनेक रंग है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ब्लैक, वाइट। इसको कहते हैं ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। यही मान लिया है कि यह ऐसा है, यह अच्छा है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह भाई बहुत अच्छा है, यह बहन बहुत अच्छी है। अगर हमने ये कहा यह बहुत अच्छा है, तो तुरंत उसके खिलाफ एक दूसरा विचार आएगा, कंपैरिजन आएगा कि इसमें वो नहीं है तो ये अच्छा नहीं है। इसको कहते हैं ऑल और नन थिंकिंग। अगला, पर्सनलाइजेशन। हर बात को क्या लेना है, क्या ले लेते हैं, पर्सनल। ये जो तुमने क्लास में कहा ना, जरूर मुझे देखकर कही थी ये बात, सही बताओ, इसलिए कहा था ना। ये बहन जी ने जो मुरली में आज जो कहा ना, मुझे तो पक्का है कल से क्लास बंद, क्योंकि वहां बैठकर हम तो कुछ बोल नहीं सकते, ये हमारे लिए ही था। बिना नाम लिए हमारी बेइज्जती। पर्सनलाइजेशन, हर बात को क्या ले लेना, पर्सनल, उसको पकड़ना, उस पर मनन चिंतन करना अमृत वेला, उसको और अंदर घुसने देना, उसको पर्सनल बना देना कि यह ऐसा ही है। जबकि सामने बैठे वाले को तो यह भी नहीं पता कि तुम बैठे हो सभा में। उसको तो कुछ याद नहीं आ रहा था, अपना भाषण रटा हुआ, इसलिए वो बोल दिया। तो उसको क्या कहते हैं, पर्सनलाइजेशन। ये पर्सनलाइजेशन भी एक बीमारी है। हर चीज को क्या ले लेते हैं, पर्सनल, और फिर दुखी होने लगते हैं। तो कितनी बातें हुई, 10। मन का स्वभाव है वह झूठी व्याख्याएं रचता है कि ये ऐसा है, और उसमें बंधता है। गलत जगह बंधने से जीवन भर भटकना अच्छा है। भटकते भटकते कम से कम कभी ना कभी तो सच का ठिकाना मिल ही जाएगा। और गलत जगह ही बंध गए, गलत व्यक्ति में बंध गए, गलत संबंध में बंध गए, गलत इच्छा में बंध गए, गलत अभिलाषा में बंध गए, गलत लक्ष्य में बंध गए, गलत महत्वाकांक्षा में बंध गए, गलत करियर में बंध गए, वहां से कैसे छूटेंगे। बन तो गए, परंतु अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये गलत है। हम उसको क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये सारी जो बातें देखी, 10, कौन कौन सी। सबसे पहला, शुड्स एंड शुड नॉट्स, हैव एंड हैव नॉट्स। जो भी नियम हमें बनाना है जीवन का, चाहे भोजन का, चाहे अमृत वेले का, जबरदस्ती वो ना बने, नहीं तो वो लंबा समय नहीं चलेगा। इन्होंने कहा, इनको देखकर, देखा देखी अगर कुछ भी किया, ये खाता है तो हम भी ये खाएंगे, वो लंबा समय नहीं चलेगा। विचार, चिंतन, गलत आदत है तो उस पर सोचो और फिर हटाओ। अगर सही आदत है तो अभ्यास को और गहरा करो। तो सबसे पहला, हैव्स एंड हैव नॉट्स। अगला, ओवर जनरलाइजेशन। सबके ऊपर एक ही चीज मत। जीवन अलग अलग अनुभव है। कोई एक व्यक्ति ने धोखा दिया, जरूरी नहीं है कि सभी धोखा देंगे। अगला, मेंटल फिल्टरिंग। क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, पॉजिटिव को हटा के जो नेगेटिव है उसको पकड़ते हैं। 10 लोग आए, 10ों ने तारीफ की, उसका कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं। एक आया, उसने निंदा की, उसके जैसे उसके इंतजार में थे, झपट के उसको पकड़ा और गले लगाया, व्यक्ति को नहीं बात को। दिन रात उसके ऊपर सोचते रहे और दुखी होते रहे, इसने मुझे ऐसा कहा। इसको क्या कहते हैं, मेंटल फिल्टरिंग। अगला, इमोशनल रीजनिंग। इमोशंस और उसका तर्क वितर्क, ये मुझसे नाराज है, इन्होंने सबको दृष्टि दी मुझे नहीं दी जानबूझकर, सबको टोली देते समय दृष्टि दे रहे थे, मैं जब आया तो नीचे देखा, जबरदस्ती ऐसा किया, मुझे पता है ना इनका, ऐसे थोड़ी ना है कि हम भूले वाले हैं, ये ऐसे ही करते हैं, पहली बार नहीं है, हमेशा ही। इमोशनल रीजनिंग। अगला, जंपिंग टू कंक्लूजन, तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचना। ये 2 लोग मिलके बातें कर रहे थे, जैसे हम पहुंचे बोलना बंद कर दिया, अर्थात मेरे विषय में ही कुछ तो बोल रहे थे। जंपिंग टू कंक्लूजन्स। अगला, मिनिमाइजेशन और मैग्निफिकेशन, खुद को बहुत ही छोटा समझना, मैं तो कुछ हुई ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं। अगर कोई तारीफ भी करे, एक वो है विनम्र भाव, पर एक है इतनी हीन भावना है भीतर कि हम स्वीकार ही नहीं करते कि हम में भी कुछ योग्यता है, और दूसरों को बाप रे हमसे तो नहीं होगा ऐसा। अगला, कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, छोटी सी बात है उसको क्या करते, बहुत बड़ा चढ़ा के, मिर्च मसाला लगा लगा के और फैलाते हैं सब तरफ। अगला, लेबल लगा देते हैं कि ये जो है ना ये ऐसा ही है, ये बहन ऐसी ही है, अरे वो बदल चुकी है, ये भाई जो है ना ऐसा ही है, फिक्स्ड हो गया है माइंड में। ये हम भूल रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, बदल रहा है, और आत्माएं अपने संपूर्ण स्वरूप की ओर बढ़ रही है। अगला, ऑल और नॉन थिंकिंग, ब्लैक एंड व्हाइट, ये बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, फिक्स्ड कर दिया, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता है, सब में सब है, हमें जो अच्छा ही दिख, हमारा जिसमें मोह है वो व्यक्ति अच्छा ही अच्छा दिखते लगता है, हमारा जिसमें मोह है उसमें ढूंढ कर भी अवगुण नहीं दिखते, हमारा जिसमें मोह है वो हमारी सृष्टि का केंद्र बन जाता है, और जब उसी से धोखा मिलता है तो उसके जैसा बुरा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। थॉट डिसऑर्डर्स है ये सारे, जैसे शरीर की बीमारियां होती है वैसे ये सोच की बीमारी है। अगला, पर्सनलाइजेशन, हर चीज को क्या ले लेना, पर्सनल, ये कितनी बड़ा डिसऑर्डर है, कितनी बड़ी विकृति है सोच की, क्योंकि इसमें व्यक्ति चुपचाप अपने अंदर ही अंदर सफर करते रहता है, ऊपर ऊपर बहुत खुश दिखता है पर भीतर भीतर दुखी रहता है, बहुत उदास रहता है। एक पिताजी अपने बेटे को कहते, बेटा उठ जा उठ जा, तुम्हें स्कूल जाना है, वो बेटा और कंबल या रजाई लेकर ओढ़ कर सोता है, ना मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। पिताजी कहते नहीं तुम्हें जाना है, वो कहता ना मैं आज नहीं जाऊंगा स्कूल। पिताजी कहते क्यों नहीं जाऊंगे, वो कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा। 3 कारण है, एक तो मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, दूसरा, मुझे स्कूल बहुत बोरिंग लगता है। और तीसरा, वो बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं सब स्कूल के। पिताजी कहते हैं तुम्हें स्कूल जाना है कि उसके, मैं अभी तुमको तीन कारण बताता हूं। कौन से तीन कारण? एक तो स्कूल में जाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा तुम्हारी उम्र अभी 55 वर्ष की है, और तीसरा तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो। बच्चे की उम्र 55 और वो प्रिंसिपल, वो भी दुखी है। क्यों दुखी है? दुख का डायग्नोसिस करना है, निदान, तब कहीं ट्रीटमेंट निकलेगी। अगर कोई पेशेंट कहता है कि मुझे ये बीमारी है ही नहीं, अब उसका इलाज कैसे करेंगे? या फिर कोई पेशेंट ये कहता है पहले ठीक तो हो जाऊं फिर डॉक्टर के पास जाऊंगा, अभी तो ताकत ही नहीं है, चल ही नहीं सकता, पहले थोड़ा ठीक हो जाऊंगा फिर इलाज करूंगा। तर्क तो बहुत पावरफुल है, अभी चलने की भी हिम्मत नहीं है, बिस्तर पर हूं तो कैसे पहुंचू, पहले ठीक हो जाने दो फिर डॉक्टर के पास। ये तर्क भी कितना करेक्ट है, पर यह भी सही है कि जब तक जाओगे नहीं तब तक ठीक भी नहीं होगे, और जब तक अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं करोगे तब तक ट्रीटमेंट चालू ही नहीं होगी। कल एक कुमार हमारे ओपीडी में आया था, एकदम कितना 25 वर्ष, थकान थकान सी लगती है, कितने सालों से 25 वर्ष की आयु है, कुमार है, सेवा में आया है कहीं इधर। हमने कहा ठीक है कुछ जांच करा लो, जांच कराई, शुगर 455, कभी जांच कराए? वो गांव में रहता है, गांव में कौन सी जांच माँ बाप को कुछ, माँ बाप को वो तो कब के चले गए, उनको पता नहीं कौन सी बीमारियां थी, डायग्नोसिस का ही पता नहीं, और थकान थकान लगती है। तो बीमारी तो थी ना, पर डायग्नोसिस ही नहीं हुआ। अपनी बीमारी का खुद ही डायग्नोसिस करना है, ये दुख है, ये मोह है, ये वासना है, ये लोभ है, जो हम कह रहे हैं हम बाबा के लिए कमाते हैं, बाबा के लिए कमाते हैं, अरे कहाँ कमा रहे हो, ये नीड है ही नहीं, ये तो ग्रीड है, जिसको हम समझते हैं और एक बिजनेस, और एक बिजनेस, और बढ़ाता हूँ, और बढ़ाता हूँ, ये सब हमें तुम्हारा पैसा चाहिए ही नहीं, ये तो लोभ की अविस्तार मात्र है। बस विकारों का डायग्नोसिस करना है, दिस इज दिस, तब इलाज चालू होगा। साकार मूल्यों में आता है जब तक ये नहीं मानोगे कि तुम बीमार हो, दुर्गति हो गई है, सदगति कैसे हो गई होगी? संसार के लोग मानते ही नहीं कि हम पतित हैं, मानते हैं क्या? किसी को जाके बोलो तुम पतित बन गए हो क्या करेंगे, डंडा खिलाएंगे? पहले तो मानो कि हम गिर चुके हैं, तब कहीं सदगति होगी। आज के तीन होमवर्क है। सबसे पहला तो एक मिठाई का चित्र निकालना है और उसमें एक दिव्य गुण लिखना है, वो मिठाई कोई भी हो सकती है, किसी भी मिठाई का एक चित्र निकाल कर उस पर एक दिव्य गुण, जैसे कि प्यूरिटी। दूसरा होमवर्क, एक चार लाइन की कविता लिखनी है, केवल चार लाइन हो जिसपे, और कविता का शीर्षक है दिलखुश मिठाई, कविता का शीर्षक है दिलखुश मिठाई, छोटी सी कविता, बहुत लंबी लंबी नहीं लिखना है, एकदम छोटी, उदाहरण उदाहरण क्या, दिल खुश मिठाई मुस्कान जगाए, हर मन में खुशियों के दीप जगाए, बाबा की याद से मधुर हो जाए, जीवन रस से सबको भर जाए, कुछ भी इस तरह से, चार लाइनें केवल। और एक दूसरा होमवर्क है आज का, दिल खुश मिठाई बांटनी है। अब जो यहाँ है वो नहीं, बाहर वालों के लिए, यहाँ वाले भी बांट सकते हैं, तो छोटी छोटी मिठाइयाँ, शक्कर ना हो उसमें, दूध ना हो, दो चीज़ें ना हो, खजूर वाले खजूर की या ड्राई फ्रूट्स की, या फिर वो तिल गुड़ या तो नारियल, और वो छोटी छोटी जो मिठाइयाँ हैं उसको बांटना है। कहाँ बांटेंगे? छोटे बच्चों को। कहाँ मिलेंगे बच्चे? गार्डन में मिलेंगे, ग्राउंड में मिलेंगे, गरीब बच्चे, अनाथ आश्रम या तो स्कूल। और उनको कहेंगे ये बाबा की याद में बनी हुई दिलखुश मिठाई है। क्या कहेंगे उनको? ये बाबा की याद में बनी हुई दिलखुश मिठाई है, उनको बांटना है। तो ये आज मिठाई बांटने का प्रोग्राम करना है। ये जो शब्द है दिलखुश मिठाई, इसको फैलाना है। कहीं पर भी किसी भी ग्राउंड पे जाओ, बच्चे खेलते रहते हैं, तो सबको ये मिले। तो आज का ये दूसरा और ये तीसरा कार्य है। तो ये तीन कार्य आज के प्रश्न। मुरली की डेट है 14/10/87 पहला प्रश्न, एक भी संबंध की कमी नहीं करनी है बाबा के साथ। अगर एक भी संबंध कम हुआ, अगर उसको पति नहीं बनाया, तो द्वापर से जो पति मिलेंगे उनसे दुख मिलेगा। एक भी संबंध की कमी नहीं करनी है। एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई ना कोई उस संबंध से अपनी तरफ खींच लेगा। कोई ना कोई डैश उस संबंध से अपनी तरफ खींच लेगा। ऑप्शन से आसक्ति, वस्तु, माया, आत्मा। यदि भगवान को से एक संबंध की कमी रखी, यदि उसे बच्चा नहीं बनाया, तो जरूर कोई दिखेगा छोटा कुमार और उसको लगेगा इसको अपना बेटा बना लो। एक माता के पास ऐसे ही एक कुमार आया मुंबई में, और उसने कहा मुझे पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। वो माता का बहुत बड़ा बंगला था, अकेली थी, उसको अपने पास रखा। फिर उसने कहा कि मुझे विदेश भी जाना है और पैसों की आवश्यकता है। उसने उसके लिए सब कुछ किया और फिर वो धोखा दे के भाग गया, कभी आया ही नहीं वापस। उत्तर है आत्मा। एक भी संबंध की कमी नहीं करनी है। एक भी संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई ना कोई डैश अर्थात आत्मा उस संबंध से अपनी तरफ खींच लेगी। अगला प्रश्न, नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन, योग निद्रा अर्थात डैश के स्थिति की अनुभूति। पहला ऑप्शन खालीपन, दूसरा गहरी नींद, चौथा शून्य, चौथा अशरीरीपन। उत्तर योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन स्थिति की अनुभूति। तीसरा प्रश्न, ये परमात्मा की वाणी है या माया की वाणी है? भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे। शिव की वाणी। अगला, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज रूप से अनुभव करो तो बाप का सदा साथ स्वतः अनुभव करेंगे। अगला प्रश्न, सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का, इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग अर्थात डैश मनाने का युग। पहला ऑप्शन गम, दुख मनाने का युग, दिवाली मनाने का युग, मौज मनाने का युग, मिलन मनाने का युग, मिलन। अगला प्रश्न, अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली डैश भाग्यवान आत्मा हो, अति भाग्यवान, कम भाग्यवान, पदम भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान। उत्तर है पद्मा पदम भाग्यवान। अगला, भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का डैश बन जाएंगे, गोदाम, मार्केट, सागर, भंडार। क्या बन जाएंगे? गोदाम, मार्केट, सागर, भंडार। उत्तर है भंडार। मुरली है 14th, 1087 की। तो अभी तक हमारी टोटल कितनी मुरलियां हो गई? 690 अव्यक्त मुरलियां कवर हो गई है। कब से चालू की है? मार्च 2024 से। कितनी बाकी है अभी तक? 376 अव्यक्त मुरलियां अभी बाकी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है अव्यक्त मुरलियों के अध्ययन का, टोटल अव्यक्त मुरलियां है 1066 1969 से लेके तो 31st December 2017। ये सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़कर हो जानी चाहिए। तो अभी तक यहाँ क्लास में कितनी कवर हो गई है? 690। 1969 की हमने छोड़ दी थी, 1970 से लेके तो 1987 तक की हो चुकी है। कितनी बची है अभी? 376। जब तक ये सारी अव्यक्त मुरलियां स्टडी नहीं हो जाती, शरीर छोड़ के जाना मत, नॉट अलाउड, पहले ही बोल दिया है, सुन लो सभी। ये जीवन का संकल्प है कि भगवान 5000 साल के बाद धरती पर आया और उसके मुख से जितनी अव्यक्त वाणियां निकली वो हमारी कम से कम एक बार तो पढ़ के हो जानी चाहिए। और यहाँ तो केवल पढ़ाई नहीं हो रही है, उसके ऊपर एग्जाम भी दी जा रही है, उसका अध्ययन हो रहा है, उस पर क्लासेस हो रही है, उस पर चिंतन हो रहा है, उसका होमवर्क दिया जा रहा है, उस पर ट्रॉफी मिल रही है, कितनी सारी चीज़ें हो रही है। तो इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये बहुत बुरी ख़राब आदत है, आप बीच में मत चले जाना, वेरी बैड हैबिट, बीच में मत जाना। बाबा को बोल देना, बाबा जब तक ये मेरी पूरी अव्यक्त मुरलियां पढ़ के नहीं होती है, इसी शरीर में रखना, ठीक है? वादा। वादा। अच्छा, इसी मुरली में, ठीक है। तो बैड हैबिट है, जाना मत बीच में से, पहले बोल दिया। अगला प्रश्न, मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ, अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ स्वयं भगवान, डैश लिए परमधाम से पढ़ाने लिए आए हैं, मेरे लिए, हमारे लिए, माया के लिए, बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए ना, क्यों हमारे लिए नहीं आए? मेरे लिए। उत्तर है मेरे। अगला प्रश्न, भगवान के हम डैश है, इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। पहला ऑप्शन बाप, भगवान के हम कौन? टीचर, बच्चे, विद्यार्थी। उत्तर क्या है? विद्यार्थी। भगवान के हम विद्यार्थी, इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। अगला प्रश्न, सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो, कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला हकदार, पहला डैश है, सेवक, गुलाम, अधिकारी, वारिस। मेरा कौन है? वारिस। अभी ये जोड़ी लगानी है, अकेला या उदास अनुभव करो तो क्या करना है? पहला। दूसरा, थक जाते हो तो क्या करना है? तीसरा, कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो क्या करना है? ये तीन इस तरफ है, अभी तीन इस तरफ जोड़ी लगानी है। तो पहला ऑप्शन क्या था? अकेला या उदास अनुभव करो तो क्या करना है? माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ, एक। दूसरा, ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप से खेलो। सर्वशक्तिमान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो। तो जब अनुभव या उदास अनुभव करो तो क्या होगा? अकेला उदास अनुभव करो तो क्या करो? उत्तर, सुंदर बच्चे रूप से खेलो। अगला, थक जाते हो तो क्या करो? माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। और कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तब क्या करो? सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो। हो गए 10? तो ये आज के 10 प्रश्न। तो आज क्या क्या देखा हमने? दो बातें देखी, एक दिलखुश मिठाई और दूसरा दिल शिकस्त की बातें। दिल शिकस्त की बातें है उसमें और 10 बातें देखी, 10 थिंकिंग डिस्टॉर्शंस, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, उनसे धीरे धीरे स्वयं को मुक्त करना है। और मन के विकारों से स्वयं की मुक्ति का मार्ग क्या है? केवल डायग्नोसिस। मेडिकल में पहले डायग्नोसिस होता है, फिर ट्रीटमेंट होती है। अध्यात्म में डायग्नोसिस ही ट्रीटमेंट है। यदि किसी ने यह रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये मोह है, समझो वो छूट गया, उसी समय छूटने की प्रक्रिया चालू हो गई, 100% रियलाइजेशन हो गया ये काम विकार है, तुरंत छूट जाएगा। यहां अलग है, यहां डायग्नोसिस ही ट्रीटमेंट है। उधर पहले डायग्नोसिस होता है फिर ट्रीटमेंट चालू होता है, इधर ताबड़तोब फटाफट इंस्टेंट। अगला क्या देखा? 3 होमवर्क देखे। पहला, एक मिठाई का चित्र बनाना है जिसमें एक दिव्य गुण डालना है। दूसरा, टोली कहाँ जाके देंगे? कोई अनाथ आश्रम होगा, कोई बच्चे होंगे, कोई गार्डन, कोई ग्राउंड जहाँ गरीब बच्चे खेल रहे हैं, या स्कूल, हाँ गणपति का त्यौहार चल रहा है, कहीं पर भी। तो उनको कहेंगे ये बाप की याद में बनाई हुई दिलखुश मिठाई है, इसको खाओ, तो उनको भी पुण्य मिलेगा, भाग्य मिलेगा। और तीसरा क्या करेंगे? एक कविता। कितने लाइन की कविता? केवल 4 लाइन की। टॉपिक होगा दिलखुश मिठाई। और फिर हमने क्या देखा? 10 प्रश्न देखे। तो ये था आज का कार्य। आज की कविता कौन सुनाने वाला है? शिव रस। कल जो यहां आए हैं और एक दो दिन ही रुकने वाले हैं उनको दे देते हैं नया टॉपिक। कौन सुनाएगा कल कविता? कोई है? बाद में जो अभी रहने वाले हैं, जो इधर ही रहने वाले हैं वो लोग बाद में। नई बहने कौन आए हैं? हाँ, एक आनंद गान, कविता का टॉपिक आनंद गान। सेंटर की बहने कोई है? हाँ इधर भी है, दीदिया ही दीदिया है सब तरफ। तो इन दीदी का नाम मुझे पता नहीं, आपको दे देते। स्मृति में खरोच, स्मृति में खरोच। अगला और कौन से दीदी है? योग अग्नि। तो 3 टॉपिक दिए हैं 3 दिन के लिए। और भी कोई है जो परसों रहने वाला है यहाँ 3 दिन के बाद, या कुमारों में से कोई है जो रुकेंगे 3 दिन के बाद? 3 दिन का तो दे दिया, उसके बाद है कोई? नहीं। तो आज का टॉपिक है शिव रस।
ओम शांति। जैसे भाई जी पूछते हैं कि कौन रहने वाला है, तो आज तो पहले उन्होंने बता दिया टॉपिक दे के, तो हाथ किसी ने उठाया नहीं। और जब परसों हम लोग पहली बार क्लास में आए, हम भट्टी में आए हुए, तो बाबू जी ने बिना टॉपिक दिए बता दिए, पूछा कौन रहने वाले हैं, मैंने हाथ उठा दिया, तो मैं आज यहाँ हूँ, क्योंकि पता नहीं था टॉपिक मिलने वाले। तो बाबा की याद में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, जोड़ी हैं साथ में, हमारे सेंटर से एक और बहन है अनीता बहन, उन्होंने और मैंने मिलके जोड़ी हैं, क्योंकि कविता का कब का संकल्प भी नहीं आया जीवन में कभी कि लिखना होगा। तो शिवरस। संगम युग की शुभ वेला है आई, शिवरस पीने की जिसमें ड्रामा ने नूंद लगाई, सभी रसों में है श्रेष्ठ यह शिवरस, नारायणी नशे में ले जाता है यह स्नेह रस। जो आत्मा इस रस को पीना सीख जाती, वह आत्मा फिर दुख तकलीफ कभी नहीं पाती। शिवरस आत्मस्मृति दिलाता, आत्मा का सोया भाग्य जगाता। आत्मा जो विकारों में गिरकर बन गई थी तमो प्रधान, यह शिवरस बदल कर बनाता है उसे सतो प्रधान। इस रस में जो आत्मा है डूब जाती, स्वर्ग में वही अमर पद है पाती। शिवरस पीने का जब आता है चाव, प्रत्यक्ष होता है हमारा आदि का भाव, भावना और स्वभाव। शिवरस अंतर्मुक्ता का पाठ पढ़ा, एवर रेडी बनाता, सेवाओं में उमंग उत्साह बढ़ाकर ऑलराउंडर बनाता। यह शिवरस दिलाता है स्वराज्य, जिसके दम पर मिलता है फिर विश्व का राज्य। शिवरस पीने से जब चढ़ती है खुमारी, पुरुषार्थी बन जाता है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ओम शांति।
मनमना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, शाले पाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप काना कर अनादर, सपनों का आवेश पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। ना सो ना लेट हो जा तैयार, उठ चल उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीर, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीर, थाम ले तप की मशाले। जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सवरेगा, अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना झुक हो जा निराधार, बढ़ चल बढ़ चल, बन युगांतर का पाड़ दे आ। जा